नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवत की इस कक्षा में। स्कंद 5 अध्याय 23 श्लोक क्रमांक 3 शिशुमार ग्रह मंडल, ये भी गद्य है, इसलिए हम लोग इसकी आवृत्ति तो नहीं करेंगे। और प्रभुपाद जी का तात्पर्य काफी बड़ा है, तो हम लोग एक बार बोलते जा रहा हूं मैं, उसके बाद फिर आप लोग सुनिएगा। उसको स्क्रीन पे दिखाइएगा।
यथा मेडिस्तंभ आक्रमण पशव संयोजिता स्त्रिभिस्त्रिभिः सवनैर्यथास्थानं मंडलानि चरन्त्येवं भगणा गृहादयः एतस्मिन् अन्तर्बहिर्योगेन कालचक्र आयोजिता ध्रुवमेवावलम्ब्य वायुनोदीर्यमाणा आकल्पान्तं परिचक्रमन्ति नभसि यथा मेघाशयनादयो वायुवशः कर्मसारथ्य परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणाः प्रकृति पुरुष संयोगानुग्रहिताः कर्म निर्मित गतयः भुविना पतन्ति।
अनुवाद को भी शब्दार्थ को देखेंगे। यथा जिस प्रकार मेड स्तंभे मध्यवर्ती स्तंभ में आक्रमण पशवः कोल्हू चलाने वाले बैल संयोजिताः जोते जाकर त्रिभी त्रिभी तीन तीन करके सवनै ही गतियों के द्वारा यथास्थानम अपने अपने स्थानों पर मंडलानि मंडल चक्कर चरन्ति पार करते हैं एवं उसी प्रकार भगणहा सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति इत्यादि ज्योतिर्गण ग्रह आदयः विभिन्न ग्रह एतस्मिन् इसमें अंतःबहिर्योगेन भीतरी तथा बाहरी चक्कर के साथ संबंध होने से काल चक्रे अनंत काल चक्र में आयोजिताः बंधा हुआ ध्रुवम ध्रुवलोक एव निश्चय ही अवलंब्य आधार बनाकर वायुना वायु द्वारा उदीर्यमाणः चक्राकार घुमाए जाकर आकल्प अंतम कल्प के अंत तक परिचक्रमन्ति चारों ओर चक्कर लगाता है नभसि आकाश में यथा सदृश मेघाः घने बादल शयनादयः बाज जैसे पक्षी वायुवशः वायु के द्वारा चालित कर्म सारथ्यः अपने पूर्व कर्म रूपी सारथी परिवर्तन्ते चारों ओर घूमते हैं एवं इस प्रकार ज्योतिः गणाः आकाश के ग्रह नक्षत्र ज्योतिपिंड प्रकृति प्राकृतिक पुरुष तथा परम पुरुष कृष्ण का संयोग अनुग्रहिता संयुक्त प्रयत्नों के द्वारा ग्रहण किया हुआ कर्म निर्मित कर्मों के द्वारा उत्पन्न गतयः जिसकी गतियां भूवि भूमि पर ना नहीं पतंती गिरते हैं। अनुवाद, यदि बैलों को एक साथ नाथ कर उन्हें एक मध्यवर्ती आधार स्तंभ से बांध कर भूसे पर घुमाया जाता है तो वे अपनी स्थिति से हटे बिना चक्कर लगाते रहते हैं। पहला बैल स्तंभ के निकट रहता है, दूसरा बीच में और तीसरा बाहर की ओर। इसी प्रकार सभी ग्रह तथा सैकड़ों हजारों नक्षत्र भी ध्रुव तारे के चारों ओर ऊपर तथा नीचे स्थित अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, पहले इसको समझ लेते हैं, कुछ तो समझ में आता है कभी कभी, ज्योग्राफी फिजिक्स थोड़ा पढ़ा हो तब समझ सकते हैं। ये ध्रुव तारा है तो इसके नीचे जो विभिन्न कक्षाओं में ग्रह है वो स्थित होकर के घूम रहे हैं, और अगर कुछ ऊपर है तो उसके ऊपर भी ऐसे करके घूम रहे हैं। बहुत आसान है समझना, और हम लोगों ने देखा तो नहीं है लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि ये कोल्हू का पिलर है, कोल्हू सब लोग समझते हैं, इसमें तेल निकालते हैं और बहुत सा ये, अरे वाह, अच्छा डेमो मिल गया, ये देखिए ये एक बैल है, अब ये ऐसे घूम रहा है तो ऐसे ही घूमेगा ये, और दूसरा बैल यहां पे आ गया तब ये इसी पोजिशन पे घूमेगा, अब बीच वाला इधर, तो ये फिक्स किया गया है। जैसे एक डंडा उन बैलों को बांध के रखता है, उसी प्रकार से भगवान की शक्ति है, वहां पे बोल रहे हैं वायु के द्वारा ये सारे ग्रह जो हैं वो अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। बहुत सिंपल है, मैं सोच रहा था किस प्रकार से समझाऊंगा लेकिन भगवान ने कोलू की व्यवस्था यहीं पे कर दी, ठीक है। वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार श्री भगवान द्वारा प्रकृति यंत्र में बांधे जाकर वायु द्वारा ध्रुव लोक के चारों ओर घुमाए जाते हैं और इस प्रकार कल्पांत तक घूमते रहेंगे। ये ग्रह विशाल आकाश के भीतर वायु में वैसे ही तैरते रहते हैं जिस प्रकार हजारों टन जल से लदे बादल वायु में तैरते रहते हैं, अथवा अपने पूर्व कर्मों के कारण बड़े बड़े बाज आकाश में ऊंचाई तक उड़ते रहते हैं और भूमि पर कभी नहीं गिरते। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामित्व नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ उपस्थित भक्त लोग, फिजिक्स कितने लोगों ने पढ़ी है? 1, 2, 3, 4, 5 लोगों ने पढ़ी है। फिजिक्स में हम लोग सिद्धांत सीखते हैं gm1m2/r², ग्रेविटेशनल लॉ हम लोग सीखते हैं। उसमें कहते हैं कि मान लीजिए ये ग्रह है और ये दूसरा ग्रह है, तो आपस में इनका जो अंदर मतलब मास, इंग्लिश में मास बोलते हैं, हिंदी में कहेंगे जो पदार्थ है, उसकी वजह से आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और इसलिए वो अपनी कक्षा में बैठे हुए हैं और घूम रहे हैं। तो ये बात नहीं समझा पाता कोई व्यक्ति कि पहली बात ये कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति आई कहां से, और दूसरा कि सारे ग्रह है, इतने सारे ग्रह हैं वो आपस में घूम रहे हैं, कभी गलत दिशा में क्यों नहीं जाते? ये दो आपस में आकर्षित हो रहे हैं, तो मान लीजिए मेरा एक हाथ एक ग्रह है, मान लीजिए एक ग्लास एक ग्रह है, थोड़ा फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ये ग्लास एक ग्रह है, ये भी एक छोटा सा ग्रह है और वो मृदंग भी एक ग्रह है, तो ये आपस में एक दूसरे को आकर्षण कर रहे हैं और घूम रहे हैं, तो आपस में लड़ क्यों नहीं रहे? हाँ, यानी कि ये समझ में आना चाहिए कि भगवान की आज्ञा से वो एक इंच भी नहीं हिल सकते। आप सब जान रहे हैं कि हम लोग का ड्रेस अभी क्यों चेंज हुआ है, क्यों स्वेटर पहन रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी पृथ्वी दूरी हो जाती है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है, तो यानी अगर जरा सा भी कक्षा में हिल गए सूर्य और पृथ्वी तो हम लोग पूरी तरह से हिल जाएंगे, कोई भी तरीका नहीं रहेगा हमारा जीवन को धारण करने का। आप जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है, कितने लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है, ओके, तो आप सब जानते हैं कि जो पृथ्वी है अब वो अपनी कक्षा में 66.5 डिग्री पे ऐसे लगी हुई है, और अगर 66.6 होती तो हम लोग जिंदा नहीं रहते। तब कौन पृथ्वी को ऐसे टांगे हुआ है, किसकी आगे से टंग रही है वो, ऐसे गर्दन टेढ़ी करके ही पृथ्वी घूम रही है, किसकी आज्ञा से? कृष्ण की आज्ञा से। आप कहेंगे हम कैसे माने कृष्ण की आज्ञा से, तो आपकी आज्ञा से घूम रही है तो हमारी आज्ञा से तो नहीं घूम रही, तो किसी की आज्ञा से घूम रही है, क्योंकि हम यहां पे कंट्रोल देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग इस, तो आप ये लोग समझ गए श्लोक को, वापस से हम लोग बार देख लेते हैं अनुवाद। अनुवाद इसका ये है कि जिस प्रकार से आप ये कोलू, नहीं नहीं मैं समझा रहा हूं, मत दिखाइए, ये देख लीजिए ये कोलू है और ये एक बैल है, धारण समझ लीजिए, मान लीजिए एक बैल है और ये बैल है और ये बैल है, तो ये जो पॉइंट है, ये ध्रुव तारा का पॉइंट है, शिशुमार कह लीजिए, उसके चारों ओर सारे ग्रह घूम रहे हैं। और ऐसा नहीं कह सकते कि इधर से बैल घूम करके इधर आ जाए, यानी कि ग्रह अपना जो कक्षा है वो त्याग नहीं सकते। और ये सब हो रहा है वायु की शक्ति भगवान के द्वारा, जो वायु शक्ति जो भगवान के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, उसके द्वारा ये ग्रह आपस अपनी कक्षा में रहते हैं। उम्मीद है कि श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आप लोग जिन्होंने फिजिक्स और ज्योग्राफी पढ़ेंगे कहेंगे प्रभु जी अंतरिक्ष में तो वायु होती नहीं है। तो ये हमारा स्वभाव हो सकता है, हम समझ सकते हैं कि हाँ वायु कैसे होगी कैसे नहीं होगी, लेकिन श्रीमद् भागवतम के अनुसार हमें समझ में आना चाहिए कि भगवान की शक्ति से हो रहा है और वायु उस प्रकार से उनको घुमा रही है। स्पेशल प्रभुपाद जी हम लोग भक्ति वृक्ष में पढ़ाते हैं इसको, बड़ी अच्छी बात बताते हैं। कहेंगे प्रभु जी भारी वस्तु वायु में कैसे तैरेगी? क्या आप स्वीकार करते हैं कि ये ग्लास हवा में तैरेगा? बहुत ही कठिन प्रश्न कर रहा हूं मैं। क्या ये ग्लास वायु में तैर सकता है? मैं आपके सामने ही इसको तैरा रहा हूं और आप कह रहे नहीं तैर सकता, बस आपको मेरा हाथ दिख रहा है और भगवान का हाथ नहीं दिखता। समझ में आ गया? हवाई जहाज का वजन आपसे अधिक होता है कि नहीं होता? तो जब देख रहे हैं कि हवा में उड़ रहा है, इसका अर्थ क्या है? उसमें पेट्रोल है कि नहीं? आपको दिखाई तो नहीं पड़ता। उसमें ड्राइवर है कि नहीं? दिखाई तो नहीं पड़ता। तो यानी एक घटना आप देख रहे हैं, इतनी भारी वस्तु अगर हवा में उड़ रही है, इसके पीछे कारण क्या है? एक जीवित व्यक्ति है। पेट्रोल भी कारण नहीं है, केवल जीवित व्यक्ति भी कारण है, भले ही वो दोनों वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। तो आपके सामने ही मैं ग्लास को तैरा रहा हूं हवा में, लेकिन इसके पीछे कारण मेरा हाथ है। अभी आपको हाथ दिखता है तो कोई चमत्कार नहीं लगता, लेकिन भगवान बिना हाथ लगाए उसको तैरा रहे। और इस प्रकार, और जिस प्रकार से ये ग्लास, ऐसा नहीं कि आप अपनी स्वेच्छा से, पहली बात तो ग्लास की कोई स्वेच्छा नहीं है ये उड़ करके उधर चला जाए, ऐसा संभव नहीं है। मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है। ऐसे ही भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, गामा विषय च भूतानी धारयाम अहम ओजस, अपनी ओज शक्ति से भगवान सारे ग्रहों को धारण किए हुए। इस संबंध में एक घटना आती है, न्यूटन साहब जानते होंगे जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, बहुत बड़े वो साइंटिस्ट हुए। तो उनके पास एक मॉडल था जिसमें बहुत सारे ग्रह बने हुए थे। तो एक व्यक्ति आया उनके पास, कहा वाह ये मॉडल किसने बनाया है? कहते कुछ नहीं अपने आप आ गया। तो कहते अपने आप कैसे आ सकता है, इतना सुंदर मॉडल है, यहाँ पे देखिए सूरज दिखा रहे हैं, यहाँ पे पृथ्वी दिखा रहे हैं। तो उन्हें कहा देखिए ये मॉडल तो समझ रहे हैं ना आप लोग, मॉडल अलग अलग छोटे छोटे गोले हैं जिसमें एक चींटी भी नहीं रह सकती, उसको आप कह रहे हैं कि ये अपने आप नहीं आ सकता, किसी ने बनाया होगा, और ये इतने विशाल ग्रह अपनी कक्षा में बढ़िया से चल रहे हैं और आप कह रहे हैं ये अपने आप आ गया। और इस चीज को प्रभुपाद जी यहां पे सात पद में समझाएंगे, इसको हिट करेंगे कि लोग गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, शक्तिमान को जीरो करना चाहते। तो इस ध्यान से इस बात को जरूर पकड़िएगा श्रीमद् भागवत के इस परपट में प्रभुपाद जी के, कि सब कुछ एक व्यवस्थापन के द्वारा हो रहा है, एक व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, वो सर्वशक्तिमान व्यक्ति है। तो हम लोग तात्पर्य में आज आगे पढ़ेंगे, कृपया इसको स्क्रीन में भी दिखाइएगा। यस, इस श्लोक के विवरण के अनुसार सैकड़ों हजारों नक्षत्र तथा सूर्य चंद्र बुध बृहस्पति शुक्र जैसे बृहद नक्षत्र न तो गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा अथवा आधुनिक विज्ञानों की अन्य किसी कल्पना द्वारा ही संपूजित हैं। संपुंजित है मतलब अपने एक साथ इकट्ठे हैं, वो न्यूटन के हिसाब से नहीं। एक न्यूटन साहब थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था गुरुत्वाकर्षण का, उन्होंने देखा कि सेब गिरा नीचे से, तो उन्होंने कहा सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? उसके बाद उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। अब हम उसको न्यूटन का लॉ बोलते हैं। तो ये बताइए कि जब न्यूटन ने देखा नहीं, उससे पहले क्या सेब नीचे नहीं गिरते थे? तो नियम न्यूटन का है कि भगवान का है? कितने अजीब सी बात है ना, नियम भगवान बना रहे हैं, लेबल लगा दे रहे हैं न्यूटन। जैसे आजकल सब वस्तुएं बनती चाइना में है, बाद में ऊपर से लिख देते हैं मेड इन इंडिया, मेड इन दिस एंड दैट, लेकिन सब कुछ चाइना से बन के आता है। तो सारे नियम तो भगवान बना रहे हैं, उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं, इसका लॉ उसका लॉ उसका लॉ, लॉ केवल कृष्ण का है। तो यही बात बोल रहे हैं कि वैज्ञानिकों की व्यवस्था से सारा ग्रह अपनी कक्षा में नहीं लगे हुए हैं। ये समस्त नक्षत्र एवं ग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद अथवा कृष्ण के दास स्वरूप हैं, और उसकी ही अवसर क्षमा कीजिएगा और उनकी ही आज्ञा से अपने अपने रथों में आरूढ़ होकर अपने अपने कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इससे क्या सीखा आपने इस लाइन से? मैंने पिछली बार भी चर्चा किया था कि हम लोग सोचते हैं कि ये पृथ्वी तो एक निर्जीव वस्तु है, भोग करो उसका, किसी की नहीं है। लेकिन वैदिक सिद्धांत में क्या सिखा रहे हैं, हर कोई जो ग्रह का मुख्य व्यक्ति है वो एक व्यक्ति है। जैसे कि विवस्वान सूर्य देवता हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो सब लोग भगवान के आज्ञाकारी दास हैं, जैसे चंद्रमा हो या सूर्य देवता हो, और उनका हमें सम्मान करना चाहिए। ये बात महत्वपूर्ण है कि हम भले ही देवताओं का आश्रय नहीं लें, ये नहीं लेना चाहिए, लेकिन असम्मान करना भगवान को अप्रसन्न करता है। ये सिद्धांत आप समझ पा रहे हैं? देवताओं का असम्मान करना, जैसे भाई इस 9 बजे जो प्रसादम होगा, अगर सूर्य देवता आए तो उनको प्रसाद में मत बिठाना क्योंकि देवता हैं। क्या आप ऐसा बोलेंगे? ऐसा नहीं बोलेंगे, वो भी भगवान के बहुत बड़े आज्ञाकारी दास हैं। और ये भी आज मैं एक दिन सोच रहा था, बात चल रही थी जिस दिन यहाँ पे सूर्य के बारे में बात हो रही थी, मैं सोच रहा था कि सूर्य देवता तो शुद्ध भक्त हैं, तभी भगवान के ने जो भगवद गीता का ज्ञान दिया, सबसे गुह्य ज्ञान दिया, सबसे पहले उनको ही दिया। तो जब भी हम सूर्य देवता को देखें तो हम लोग पंचाकल्पतरु कर सकते हैं, करना भी चाहिए, हमें कृपा करें। इन कक्षाओं की उपमा प्रकृति द्वारा नक्षत्र और लोकों के अधिपतियों की प्रदत्त यंत्रों से की गई है, जो महाराज ध्रुव द्वारा शासित ध्रुव लोकों के चारों ओर चक्कर लगाकर श्री भगवान के आदेशों का पालन करने वाले हैं। कि एक अद्भुत बात यह भी है कि ध्रुव महाराज काफी बाद में आए हैं सूर्य देवता और अन्य देवताओं के, लेकिन अब भगवान की आज्ञा है कि ध्रुव लोक की परिक्रमा करनी है तो कर रहे हैं चुपचाप। ये भी एक आज्ञा कार्यता है कि नहीं? अरे ये तो बाद में आए, तो न्यू डिवोटी है, इसके अंडर में हम कैसे सेवा करेंगे, लेकिन कर रहे हैं सेवा, ठीक है। इस संबंध में आप लोगों ने जिन्होंने अजामिल की कथा सुनी है वो कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये बात, कि जब यमदूत यमराज जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कति सन्ति ही शास्त्राणि, किसके कितने सारे अधिकारी हैं यहाँ पे, अब आपका शासन नहीं चल रहा है। तो फिर यमराज बताते हैं कि भाई ब्रह्मा, मैं, यमराज, बाकी जितने भी देवी देवता हैं, सब लोग कृष्ण की, विष्णु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। तुम लोगों को मैं भागवतम क्लास नहीं दे पाया, इसलिए तुम लोग जानते नहीं ये बात। तो सोचिए, यमराज और सूर्य और चंद्रमा, इतने शक्तिशाली लोग, जब भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, तो कोई कहे कि भाई हम भगवान को नहीं मानते, तो कितना मूर्ख बात है, मूर्खता की बात है। और अद्भुत बात है इसके संबंध में, भक्त बोल रहे थे, हाँ भाई तुम भगवान को तो नहीं मानते हो, लेकिन ट्रैफिक इंस्पेक्टर को मानते हो, जब बोलता है ऐसे रुक जाओ तो हमें रुकना पड़ता है, और नहीं तो चालान हो जाता है। तो ये कोई पागल ही व्यक्ति कहेगा कि मैं भगवान की आज्ञा को नहीं मानता। इसको आगे हम चर्चा में देखेंगे भी किस प्रकार से हर व्यक्ति भगवान की आज्ञा को मान रहा है। ओके, आवाज में परिवर्तन आया। ठीक है, इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में इस प्रकार की गई है, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ये सूर्यदेव के बारे में बोला जा रहा है। कुछ स्पीकर बंद हो गए क्या, कुछ अजीब सा घटना हुई है। हाँ, मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं जिनके आदेश से ईश्वर के चक्षु रूप सूर्य भी शाश्वत काल की स्थिर कक्षा में घूमता है। सूर्य समस्त नक्षत्रों का राजा है और उसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की असीम शक्ति है। इसके ऊपर एक भक्त बोल रहे थे, ये हमने भी सुना था, कि सूर्य ठंडा हो रहा है और भक्त बता रहे थे कि उसी दिन उसी साल जो है सबसे अधिक गर्मी पड़ी। तो भाई अगर सूर्य ठंडा हो रहा है तो गर्मी कैसे अधिक बढ़ रही है? तो आप देख सकते हैं कि अगर हम साइंटिस्ट पे विश्वास करें, और हम लोग की ट्रेनिंग हो गई कि हम साइंटिस्ट पे विश्वास करते हैं, तो आज इस साइंटिस्ट की बात आएगी अगले दिन फिर वो चेंज कर देगा, और बड़ी बेइज्जती भी हो जाती कोई कहे कि भाई सूर्य ठंडा हो रहा है, और उसी दिन भगवान कहते हैं देखो गर्मी इतनी बढ़ा दी उन्होंने, टेम्परेचर बढ़ा दिया। यहां पे श्लोक में हम क्या सीख रहे हैं, अशेष तेज, सूर्य का तेज कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये भी बात है, नाहक चिंता करते, नाहक मतलब यूजलेस, बोलेंगे भाई 5 अरब साल बाद सूर्य ठंडा हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत है 5 अरब साल बाद अब ठंडा भी होगा तो तब तक रहना है भौतिक जगत में। तो इसलिए ये केवल व्यर्थ की कल्पना है, 5 अरब साल बाद अगर सूर्य ठंडा हो भी जाए तो क्या उसको वेरीफाई करने के लिए, सत्यापित करने के लिए आप और मैं रहेंगे? हम लोग रहेंगे तो सही, लेकिन उस रूप में रहेंगे। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि सूर्य जैसे भगवान इतने शक्तिशाली व्यक्ति, वो अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं और वो कभी भी लेट नहीं होते। हम लोग तो आप देखें, जैसे हम लोग तो कभी मंगल आरती नहीं मिस करते ना, हाँ कभी मिस नहीं करते ना, कभी बुखार होता है कुछ भी नहीं होता, कभी हम लोग मिस नहीं करते, जब कभी मिस नहीं करते, सब कुछ एकदम जैसे हम लोग टाइम से करते हैं, वैसे ही सूर्य भगवान भी टाइम से सब कुछ करते हैं। तो सूर्य भगवान कभी भी अपनी गति में लेट नहीं करते, किसकी आज्ञा से? भगवान नहीं, बाय चांस और बाय कृष्णा कृष्ण के। तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति जिनका हम नाम जप कर रहे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हैं, वो कितने शक्तिशाली हैं। इस सारे विवरण से हमको ये सीखना चाहिए, हम सीख भी जाएंगे कि हम लोग बहुत बड़े हैं, बड़े मूर्ख। अगर हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं तो बहुत बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग कृष्ण के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, तो हमें नतमस्तक होने में क्या दिक्कत है? खैर आप तो सब भक्त हैं, हो ही रहे हैं, लेकिन ये विचारनीय बात है कि एक भक्त हमारे, मेरे गुरु महाराज के एक वक्तव्य है बहुत गंभीर, कि अगर किसी भक्त को, ये भक्त की बात हो रही है, भक्त को तो कोई मतलब ही नहीं है, किसी भक्त को भगवान की महिमा का थोड़ा सा भी साक्षात्कार होता है तो वो एकदम नम्र हो जाता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर किसी भक्त को भगवान की महिमा का थोड़ा सा भी साक्षात्कार हो जाता है तो वो एकदम नम्र हो जाता है। यानी इसको विपरीत में बोलें, अगर हम लोग अहंकार से पूरित हैं तो यानी महिमा को नहीं समझ पा रहे। जैसे कि आप सब लोगों को लीला पता है, ब्रह्मा जी अपने आप को खरगोश के रूप में देखते हैं, मैं उस लीला को नहीं समझा रहा हूं। ब्रह्मा जी और कितने बड़े बड़े देवता नतमस्तक हो रहे हैं भगवान के सामने। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान की आज्ञा का पालन करना हम लोग का बहुत बड़ा कर्तव्य है, एकमात्र कर्तव्य है। ठीक है, ब्रह्म संहिता के श्लोक से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सबसे बड़ा एवं सर्वशक्तिमान ग्रह सूर्य भी स्थिर कक्षा अथवा कालचक्र के अंतर्गत श्री भगवान की आज्ञा से घूमता है। ये तो समझ में आ रहा है, कुछ समझाना नहीं है। गुरुत्वाकर्षण या विज्ञानियों द्वारा बनाए गए अन्य काल्पनिक सिद्धांतों से इसका कोई सरोकार नहीं है। ये भी हमने आपको समझा दिया था कि जो वैज्ञानिक हैं उनके नियमों के अनुसार सूर्य नहीं चल रहा है, और ये जो लोग फिजिक्स जानते हैं वो समझते हैं कि ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम भी बताया गया है, यह भी एक अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? काल्पनिक नहीं बोलते, काल्पनिक इसे मोटा मोटा अंदाजा। जैसे मैं बोलूं कि भाई इसमें कितने ग्राम पानी है, लगभग, यस, तो आप कहेंगे लगभग 250 ग्राम पानी होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि 250 ग्राम हो सकता हो, 200 ग्राम हो, 270 ग्राम हो। लेकिन अगर कोई अंदाजे से चल रहा है तो वो एक ही कक्षा में बराबर नहीं घूमता रहेगा। ये बात थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही होगी। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत बताया गया है वह अप्रोक्सीमेशन है, वो लगभग ठीक होता है। लेकिन अगर सूर्यदेव, मैं सूर्यदेव का एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई भी ग्रह बराबर अपनी कक्षा में चल रहा है तो क्या वो लगभग वाले नियम से चल रहा होगा या एकदम सटीक नियम से चल रहा होगा? बताइए, सटीक नियम से। और सटीक नियम वाले की बुद्धि साइंटिस्ट की बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है। वो कौन है सब जानते हैं, बलराम जी कृष्णा। भौतिक विज्ञानी श्री भगवान के शासन से दूर रहकर नक्षत्रों की गति के लिए नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, जिनके अंतर्गत वे नक्षत्रों की गति का होना मानते हैं, किंतु श्री भगवान का आदेश सर्व प्रमुख शर्त है। ग्रहों के प्रमुख देवता पुरुष हैं और भगवान श्री पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। श्री भगवान अपने अधीन विभिन्न नामधारी देवताओं को आदेश देते हैं कि वे उनकी परम इच्छा का पालन करें। इसकी पुष्टि भगवद्गीता में हुई है, जिसमें श्री कृष्ण का वचन है, मया दक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेया जगद वि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हुई संपूर्ण चराचर प्राणियों को उत्पन्न करती है, इसी कारण इस दृश्य जगत का बारंबार सृजन एवं सहार होता है। ये श्लोक मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि भगवद गीता का पहला श्लोक है जो मैंने याद किया था, और क्यों किया था उसके पीछे भी घटना है, इसी कक्षा से संबंधित है। IIT में हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, उनका नाम था टॉम, कुछ भी नाम रहा हो लेकिन उसको टॉम बोलते थे, और भगवद गीता पढ़ता था। और मैं दिन मैसेज से थोड़ा प्रचार करने के लिए गया तो उसने बोला, भाई देखो ये जो प्रकृति है ना, ये मत सोचना कि ये बिजली की तरह ही अपने आप काम कर रही है। तो मैं चुपचाप, तो न्यू डिवोटी थे तो कुछ आपको पता नहीं था क्या करेंगे। फिर उसी दिन दिसंबर में हम लोग जो है, मैं वृंदावन आया था, तो जैसे मैंने भगवद गीता खोली तो कौन सा श्लोक देखा, मया धक्षेण प्रकृति, पहला चमत्कार। तब मुझे विश्वास है ये बुद्धू, ये टॉम वाकई इसके बाद दिमाग जो है इंसान का नहीं है, क्योंकि पूरी भगवद गीता पढ़ने के बावजूद ये समझ में नहीं आया कि प्रकृति जो है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही। कितना अद्भुत बात है। और आप जितने भी साइंटिस्ट देखेंगे उनको इस जगत में हम लोगों से कहीं अधिक डिजाइन दिखाई पड़ता है। डिजाइन का मतलब है, डिजाइन समझते हैं आप लोग, जैसे मान लीजिए ये पर्दा बना हुआ है तो पर्दे का डिजाइन दिख रहा है आप लोगों को, यहां पे इसको बनाने वाला क्या कहते हैं दर्जी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि आप इस डिजाइन को देख रहे हैं इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कोई बुद्धिमान दर्जी होगा। अगर इस डिजाइन में कुछ कमी होती तब क्या बोलते हैं आप लोग, तब भी बोलते कि दर्जी है लेकिन दर्जी बेवकूफ है, उसको आता नहीं। यानी कि डिजाइन देख करके हम डिजाइनर का अनुमान लगा सकते हैं, व्यवस्थापन देख कर व्यवस्थापक का अनुमान लगा सकते हैं बहुत सहजता से, और हमसे अधिक दिखाई पड़ता है फिर भी आंखें बंद करके बैठे हुए। एक और अद्भुत बात है कि भक्तों को समझ में नहीं आता कि भगवान का व्यवस्थापन होता कैसे है, लेकिन बड़े खुश होकर वो बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे हम लोग ये सुन लिए कि सूर्यदेव उनकी आज्ञा से घूम रहे हैं, अब हमको ये पता नहीं कि भगवान ने कब आज्ञा दी, क्या आज्ञा दी, कितने बजे उठने के लिए बोला सूर्यदेव को, कितने बजे अस्त होने के लिए बोला, वो हम जानते नहीं ठीक से। लेकिन हम इस भगवान की इस महानता को भक्त लोग गुणगान करते हैं कि भगवान कितने महान है, देखो सूर्यदेव उनकी कक्षा अपनी कक्षा में चल रहे हैं उनकी आज्ञा से। एक बात और है कि प्रकृति, थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का उपयोग करेंगे, प्रकृति जो है वो उपादान कारण है। उपादान कारण का मतलब होता है किस चीज से ये वस्तु बना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस ग्लास का उपादान कारण क्या है तो आप क्या बोलेंगे, स्टील है। और निमित्त कारण, निमित्त कारण मतलब इसको बनाने वाला, यानी कि किसी मशीन से बनाई होगी तो इस मशीन को चलाने वाला बिजली जो भी है वो निमित्त कारण है, लेकिन इसके पीछे भगवान की इच्छा है। आप सब जानते हैं या नहीं जानते तो हम समझा रहे हैं, प्रधान के समय, प्रधान जो स्थिति होती है प्रकृति की, उसमें कुछ भी नहीं रहता, सब बैलेंस रहता है, रजोगुण रजोगुण तमोगुण सब बैलेंस रहता है। सारा अवयव सारे जितने भी सामान चाहिए इस प्रकृति में का निर्माण करने के लिए या सृष्टि करने के लिए सब रहता है, लेकिन जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तब उसमें शोभ उत्पन्न होता है और सृष्टि होती है। तो यही बात भगवान बोल रहे हैं मया दक्षिण प्रकृति। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रकृति अपने आप सब कुछ कर लेगी, जैसे ऐसा नहीं है कि मान लीजिए इसमें पानी आया है तो पानी अपने आप आ गया, कोई व्यक्ति उसमें डाला है उसको और उसको गर्म किया है, जो भी कुछ किया उसके पीछे एक जीवित व्यक्ति है, ऐसे ही सृष्टि के पीछे भगवान है, सृष्टि अपने आप नहीं हो रही है, ये समझ में आना चाहिए। ओके, नक्षत्रों की कक्षाएं उन शरीरों के समान हैं जिनके भीतर जीवात्मा विद्यमान है, क्योंकि दोनों ही श्री भगवान द्वारा संचालित यंत्र हैं, जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्येन सर्वभूतानि यंत्र रूढानि माया। बहुत सुंदर है, आपने इसको विचार करें इस पे क्या बोल रहे हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर जो आप मेरा शरीर देख रहे हैं ये आदि भौतिक स्वरूप है मेरा, और इसके अंदर आत्मा बैठी है, मैं बैठा हूं उसके अंदर, भले ही मैं दिखाई नहीं पड़ रहा आप लोगों को और आप भी मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, मैं खाली आप लोगों का शरीर देख पा रहा हूं। उसी प्रकार से हम पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी की एक देवी है, सब जानते हैं पृथ्वी देवी, उनको हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन उनके आधिभूत आधि भौतिक शरीर को हम देख पाते हैं। तो जो वैज्ञानिक हैं बस खाली आधि भौतिक शरीर को देखते हैं और उसके पीछे जो व्यक्ति है उसको नहीं समझ पाते, और ये नहीं समझ पा रहे कि वो व्यक्ति भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है। मेक सेंस? अगर हम कहें कि ये ग्लास मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है. जब बोला जा रहा है आज्ञा पालन कर रहा है, मतलब कोई जीवित व्यक्ति होगा जो आज्ञा पालन करे. तो इसलिए इस बात को यहां पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान सभी जीवात्माओं के हृदय में बैठे हुए हैं और शरीर रूपी रंत्र में जो जीवात्मा बैठी है उसको प्रेरणा दे रहे हैं, ये करो वो करो, यहां जाओ ऐसे करो वैसे करो, उसी प्रकार से सभी जो ग्रह हैं उनके अधिष्ठाता देवता जो हैं वो भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहे. अच्छा एक चीज उसको और समझिए, जो लोग भी गाड़ी चलाना जानते हैं, बाइक या कार, क्या हमेशा पुलिस वाला आपके पीछे रहता है तभी आप नियमों का पालन करते हैं? ये बात आप स्पष्ट समझ रहे हैं ना? तो यानी कि आज्ञा का पालन करने का मतलब ये नहीं है कि आज्ञाकारी व्यक्ति, जो आज्ञा देने वाला व्यक्ति हमेशा आपके सर पे चढ़ा रहे. हम जानते हैं कि अगर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमको दंड प्राप्त होगा. तो उसी प्रकार से यमराज हो या जो भी हो, वो भगवान की आज्ञा के अनुसार इस जगत में कार्य करते हैं, भगवान की दासत्व को स्वीकार करते हुए. हे अर्जुन, परमेश्वर प्राणी मात्र के हृदय में स्थित हैं, वही भौतिक शक्ति रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब जीवों को अपनी माया शक्ति के द्वारा घुमा रहे हैं. यह यंत्र चाहे शरीर यंत्र, कक्षा यंत्र अथवा कालचक्र हो, श्री भगवान के ही आदेशानुसार कार्य करता है. श्री भगवान तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही मिलकर न केवल इस ब्रह्मांड का वर्ण, इसके परे लाखों ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं. इस पे एक विचार बहुत सुंदर है कि भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं और हमसे कोई मदद नहीं मांगते. भगवान कभी पर्ची कटाने गए हैं कि भैया मुझे ब्रह्मांड बनाना है तो आप लोग कुछ डोनेशन दीजिए? भगवान तो कोई पर्ची नहीं कटवाते हैं, सब अपने से ही प्रस्तुत कर देते हैं. ऐसा तो कोई मंदिर हम नहीं बना सकते जिसमें ईंटें भी हम अपने शरीर से निकालें ना, हड्डी से ईंट बना लें, या कुछ संभव ही नहीं है. या अपने खून से, ऐसे बड़ी ऐसी बातें बोलना भी अच्छा नहीं लगता, नहीं खून से सान सान करके सीमेंट बना लें, ऐसा तो नहीं कर सकते. लेकिन भगवान अपने अचिंत शक्ति से सब कुछ, अपने ही शक्ति से सब कुछ प्रकट कर देते हैं. तो आप कहेंगे भाई इतना कर देते हो तो खाली हो जाते होंगे भगवान. लेकिन ये भी भगवान की अचिंत शक्ति है कि इतने सारे ब्रह्मांड से आते हैं और फिर भी वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती. इससे पहले भी हमने बताया था कि और ये सारे ब्रह्मांड जब अंदर भी चले जाते हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान को अपच हो जाए और वो हाजमोला की दुकान हाजमोला खाए, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले. इन सारी चीजों में हम देखेंगे कि सब कुछ, इन सब में हम स्वीकार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की अचिंत शक्ति है. ये भक्त का मुख्य गुण है कि भगवान के गुणों को के पीछे भगवान की अचिंत शक्ति को स्वीकार जरूर करता है. मेरा कुछ बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है लेकिन हम फिर ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी नहीं हो पाए, और क्योंकि आज सुबह अनाउंस किया था क्लास 8 से 9 ही होगी तो हमें 9 बजे तक ही खत्म करना है, हमें आज्ञा पालन करना है. ठीक है, इस श्लोक में इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि नक्षत्र तथा ग्रह किस प्रकार तैर रहे हैं. गुरुत्वाकर्षण का इसमें कोई हाथ नहीं है. तो भागवतम की फिजिक्स क्लास में आप बोलेंगे G m1 m2 / r² 0 नंबर एकदम 0 मिलेगा. तो यानी कि अगर 100 चाहिए तो क्या ही बोलना है कि कृष्ण की इच्छा से हो रहा है. सारी चीजों का उत्तर क्या है? कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की इच्छा. बेटा पास हो गए, कृष्ण की इच्छा. गुरुत्वाकर्षण का इसमें कोई हाथ नहीं है, वरन नक्षत्र तथा ग्रह वायु के द्वारा तैर पाते हैं. इसी कारण आकाश में बड़े बड़े बादल और बड़े बड़े बाज पक्षी उड़ पाते हैं. आधुनिक वायुयान यथा 747 जेट यान भी इस प्रकार कार्य करते हैं. वे वायु को नियंत्रित करके आकाश में ऊंचाई पर तैरते हैं और नीचे गिरते को रोकते हैं. इस प्रकार से वायु का नियंत्रण पुरुष और प्रकृति के सिद्धांतों के सहयोग के द्वारा संभव हो पाता है. ये समझ में समझाता हूँ. पहली बात, हम लोग जब IIT में डिजाइन का कोर्स पढ़ रहे थे उसमें बताया गया था कि आज तक लोग ये समझ नहीं पाए कि हवाजहाज उड़ता कैसे. एग्जैक्टली कोई समझ नहीं पाया है कि हवाजहाज उड़ता कैसे, लेकिन उड़ रहा है. तो बताया गया था कि इंजीनियरिंग जो है वो साइंस के पीछे नहीं चलती है. उड़ा दिया उन्होंने, किसी तरह से उड़ा दिया. अब आप यहां पे देख रहे हैं पुरुष और प्रकृति के सिद्धांत. हवा है और उसके डैने होते हैं. मैं पूरी साइंस तो नहीं समझाना चाहता इसके पीछे, लेकिन उसका उपयोग किया जाता है. एक जीवित पायलट उसके अंदर बैठा होता है. ठीक है, हवा है, पेट्रोल है, और उसके पीछे जो बैठा पायलट है वो उस हवाई जहाज को कंट्रोल कर रहा है. थोड़ा समझा देता हूं. जब आप हवाई जहाज में बैठेंगे तो तो उसके डैने होते हैं, उस डैने के पास में हल्का सा एक फिन होता है, उसको नीचे ऐसे दबाएंगे तो फिर ऊपर उसको लिफ्ट मिलता है, ऊपर उठ जाता है। कोई बात नहीं, हम ज्यादा फिजिक्स नहीं पढ़ाना चाहते, लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो डैने हैं जब ये ऐसे घूमे हल्का सा तो ये किसने किया? पायलट ने। ये समझ में आ गया? पुरुष एक जीवित व्यक्ति, ऐसे नहीं कि डैने अपने आप ही घूम गए और अपने आप ही चल गए, ऐसा नहीं होता। तो इसी प्रकार से जो ग्रह हैं वो घूम रहे हैं वायु की शक्ति से, और उसके जो पीछे कंट्रोलर हैं वो उसको क्रियान्वित कर रहे हैं और वो ठीक ठीक अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, और ये सब भगवान की आज्ञा से हो रहा है। प्रकृति और पुरुष माने जाने वाले श्री भगवान के सहयोग से इस ब्रह्मांड के सारे कार्यकलाप सुचारू रूप से चलते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में प्रकृति का वर्णन इस प्रकार हुआ है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चचेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। बहिरंगा शक्ति माया की जो चित्त शक्ति की छाया तुल्य है, सभी लोग दुर्गा के रूप में जो संसार के सृजन पालन तथा संहार करने वाली शक्ति हैं आराधना करते हैं। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ जिनकी इच्छा से दुर्गा अपने सारे कार्य करती हैं। इसमें शब्द हाँ छायेव, देखिए नहीं दिख पा रहा है, बहुत सारी रोशनी है लेकिन आप समझ सकते हो, अगर मेरा हाथ है तो उसकी छाया है, दिख रहा है आप लोगों? वेरी गुड। तो ये छाया जो है ये मेरे हाथ का स्पर्श नहीं करती है लेकिन हाथ के अनुसार ही चलती है। एकदम क्लियर है? हाथ के बिना छाया का मतलब नहीं है, तो हाथ के अनुसार ही छाया चलती है लेकिन छाया हाथ का स्पर्श नहीं करती। उसी प्रकार से प्रकृति, बहुत बार एक भक्त इस पे मजाक करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं अरे प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है, भगवान कहाँ है? तो क्या प्रकृति तुम्हारी नानी है? प्रकृति से मिल के आए हो? अरे भाई आप बोल रहे हो प्रकृति, तो ये भी सोचना चाहिए कि किसकी प्रकृति। जैसे आप कहेंगे छाया पड़ रही है तो कहेंगे किसकी छाया। तो इस संबंध में एक छोटी सी कथा है, बहुत छोटी सी, कि एक बच्चा था, उसके पिताजी रोज नौकरी पे जाते थे सुबह, और वो उठता नहीं था, और जब लौट के आते थे तब वो सो जाता था। तो एक दिन संडे के दिन पिताजी घर पे थे तो बच्चे ने पूछा, मदर हु इज दिस मैन, ये व्यक्ति कौन है? तो माता जी समझाती हैं कि भाई ये तुम्हारे पिता हैं, से तुम्हारा जन्म हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादर, पिता का मतलब क्या होता है मदर? तो अब वो समझ नहीं पा रहा है कि ये पिताजी हैं और पिताजी का मतलब क्या है, इनके द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है, और ये मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ पाते। साइंटिस्ट भी इसी प्रकार के महामूर्ख हैं। नोबेल प्राइज इसको मिल रहा है वो हर बार यही सत्यापित कर रहा है, ये पिछले वाले मूर्ख से और अधिक मूर्ख हैं इसलिए इनको नोबेल दिया जा रहा है, और वो पिछले इससे अगला वाला जो होगा उससे और अधिक मूर्ख होगा, क्योंकि एक ही बात को बार बार समझ नहीं पा रहा है कि भाई तुम्हारे पिता है, खाली परम पिता है, इसलिए हमेशा माताजी नहीं करना चाहिए, गोविंद आदि पुरुषम भगवान प्रभु पिता का भजन करना चाहिए। तो ये बड़ी दिक्कत है। एक और उदाहरण दिया जाता है कि अगर कोई बिच्छू चावल के ढेर से अब छोटे बिच्छू आता हुआ दिखेंगे तो बिच्छू के पापा कौन है? जो देखते हो उसे विश्वास नहीं कर रहे हो, चावल से बिच्छू आया है तो चावल पापा हुआ। इसी प्रकार से लोग सोच रहे हैं, जैसे आप सब जानते हो कि बिच्छू के अंडे कोई बिच्छी ने दिया होगा उसके बिच्छू पापा होगा, तो बिच्छू का पापा और मम्मी बिच्छू और बिच्छी ही होते हैं, बिच्छी बोलेंगे जो भी बोल लीजिए। तो उसी प्रकार से जीवात्मा और ये प्रकृति जो है ये सब कुछ हो रहा है वो भगवान के द्वारा आ रहा है, ये समझ में आना चाहिए। प्रकृति अपने से कुछ नहीं कर सकती। इस पे एक और बहुत बड़ा प्रमाण है कि प्रकृति हमेशा अभिव्यक्त नहीं रहती है। जब भगवान सृष्टि की इच्छा करते हैं तब सृष्टि होती है, और फिर बीच में फिर सब खत्म, और उसके बाद फिर सृष्टि, और फिर सब खत्म, फिर सृष्टि, ठीक है। पर प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति दुर्गा अर्थात नारी शक्ति के नाम से भी अभिहित है, जो इस ब्रह्मांड रूपी दुर्ग की रक्षा करती है। दुर्गा शब्द का अर्थ दुर्ग भी है। यह ब्रह्मांड एक महान दुर्ग के समान है जिसमें बद्ध जीव रखे गए हैं, और वे तब तक उससे छुटकारा नहीं पा सकते जब तक श्री भगवान की दया दृष्टि ना हो। इस संबंध में एक भक्त बोल रहे थे कि इंग्लिश में पहले बोल देता हूं फिर हिंदी में उसका अनुवाद करें, इंग्लिश में बड़ा मजा आता है कि उसमें मजा नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में, कि दुर्गा मीन्स शी इज अ वेरी हैवी मदर, वो बहुत कठोर माता है। कुछ माताएं बहुत पिटाई करती है ना बच्चों की, जरा सी गलती होती तेज चाटा, उसी प्रकार से दुर्गा जी जो हैं वो बहुत कठोर माता हैं। थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो वो जो उनके तीन त्रिशूल है ना, एक त्रिशूल के तीन क्या कहते हैं उसको, कांटे, आदि दैविक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट, ये ले। और अद्भुत बात यह है कि बार बार कष्ट भोगने के बाद भी हम फिर दुर्गा जी की शरण में जाना चाहते हैं, इस दुर्ग से बाहर नहीं निकलना चाहते। ये एक बहुत दुख की बात है। लेकिन दुर्गा जी बड़ी प्रसन्न होती हैं जब कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। ये सारा उनका बहुत आशीर्वाद होता है। जैसे कि आप पढ़ सकते हो 12वें स्कंद में, कौन से ऋषि थे, मार्कंडे ऋषि, उनसे दुर्गा जी और शिव जी बड़े प्रसन्न हुए थे, भगवान श्री कृष्ण की वो भक्ति कर रहे थे। तो दुर्गा जी का आशीर्वाद भी हमको मिलता है। वो भी महान वैष्णवी हैं, जब भी उनको देखें तो उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। वो भी इस्कॉन की डिवोटी है, आपको पता है, आपको पता है दुर्गा जी इस्कॉन डिवोटी है। अच्छा, इस्कॉन डिवोटी सब कौन सा मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या कोई भक्त मेरी इस बात को समर्थन कर सकते हैं? ओके, तीन लोग तो मेरा समर्थन कर रहे हैं कि दुर्गा जी इस्कॉन की डिवोटी हैं। तो उनके दीक्षा गुरु कौन है, हरिदास ठाकुर। तो उन्होंने स्वयं हरे कृष्ण मंत्र की दीक्षा जो है इस्कॉन में ली हुई है, तो इसलिए हरे कृष्ण मूवमेंट में। तो इसलिए आप कहेंगे अगर हरे कृष्ण मूवमेंट में ली हुई है तो प्रभु जी ये इतना माया परेशान क्यों करती है? वो तो टेस्ट देती है आपको, सीनियर डिवोटी है तो आपको टेस्ट देती रहती है। न्यू डिवोटी को टेस्ट आता रहे और वो पास होता रहे, जैसे जैसे पास होता रहेगा उसको हायर सर्टिफिकेट देते हैं, लेवल वन पास हो गया, अब लेवल टू पे आओ, लेवल थ्री पे आओ, और हर लेवल के संग हम कृष्ण के और नजदीक जा रहे हैं। ये खाली उनका एग्जाम देने का तरीका है, ये भी सहयोग है उनका। क्योंकि मान लीजिए आपके भक्ति के जीवन में कोई तकलीफ नहीं आती तो आप क्या बोलते हैं, मैं तो शुद्ध भक्त हो गया, नहीं देखो ये लोग बेचारे, उनको नाम में रुचि भी नहीं मिली, देखो पहले दिन से हरे कृष्ण आनंद मिल रहा हूं, फिर तो हम अहंकार में आ जाते। तो इसलिए माया देवी थोड़ा कष्ट देती रहती है ताकि हम लोग थोड़ा नम्र बने रहे। ये भी उनकी एक सेवा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हरिदास ठाकुर जी की भी परीक्षा लिया था उन्होंने, छोड़ा नहीं था इतनी आसानी से। इसमें एक बहुत सुंदर बात श्रीधर स्वामी बोलते हैं, एक श्लोक है, पतंती पर्वतात् यजंति यागई वदंती वादही, कि आप जो चाहे तपस्या कर लो, पर्वतों से कूद जाओ, शरीर को फाड़ लो। अब ये क्या कर रहे हैं, मेरा स्पीकर ही, इसको स्पीकर को बंद कर दीजिए, मेरे कहा से आवाज ठीक नहीं आ रही, हरे कृष्णा, व्हाट इज दिस। और देखिए 10 मिनट बाकी है, इसमें साउंड मत डिस्टर्ब कीजिए। तो मैं क्या बात कर रहा था, चाहे कितनी तपस्या कर लो, चाहे कितना भी आप क्या था, तपंति तापे पतंति पर्वतात्, पर्वतों से कूद जाओ, यजंती यागे, चाहे कितने भी यज्ञ कर लो, वदंती वाद है, कितने वाद विवाद कर लो, बिना हरिम नैव नृतिम तरंती। पॉइंट टू पॉइंट बात यह है कि भगवान हरि की शरण लिए बिना व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं सकता। बहुत सुंदर श्लोक है ये। और एक और इसका अर्थ आप ऐसे ही ले सकते हैं कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तपने की जरूरत नहीं है, कूदने की जरूरत नहीं है, बहुत यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, और बहुत वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। हरि की शरण लिया तो निश्चित मृतम तरंती, निश्चित रूप से हम मृत्यु को तर जाएंगे, तरेंगे ही। ये भी इस तरह से इसका अर्थ हम ले सकते हैं। और इसको भगवान यहां बोल रहे हैं, दया दृष्टि किस पे होगी, भगवद गीता में श्री भगवान स्वयं कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, अरे बाप रे बहुत परपट है, एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सुवर्जुन। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरा आविर्भाव और कर्म के दिव्य स्वभाव को जानता है, वह देह को त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अर्थात इस ब्रह्मांड रूपी दुर्ग से छुटकारा पाकर अध्यात्म जगत में जाया जा सकता है। इस संबंध में बहुत, इसको तो बहुत व्याख्या किया जाएगा, एक बहुत सुंदर बात बताऊंगा। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं 10वें स्कंद में कि कंस को पता था कि भगवान विष्णु को मारा नहीं जा सकता, तो ये भगवान की दिव्यता का इतना अंश उसको जरूर पता था कि भगवान को मारा नहीं जा सकता था, इसलिए कंस को बहुत डर लगता था कि कृष्ण कब आएंगे और मुझे मार देंगे। तो ये बात पता होने से ही वो मुक्त हो गया। अब श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखिएगा, इसीलिए भयभीत हो रहा था कि वो जानता था कि विष्णु को मार नहीं सकते, लेकिन लगा पड़ा था उनको मारने में, लेकिन ये बात जानता था कि भगवान विष्णु को, कृष्ण को मारा नहीं जा सकता। इतनी बात भी किसी को पता हो कि कृष्ण जो है वो कभी मरते नहीं है, कभी हमारी तरह जन्म नहीं लेते हैं, ये सब बातें खूब सुने व्यक्ति, तो भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है और भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे तो बहुत व्याख्या किया जा सकता है इसके ऊपर, लेकिन हम शॉर्ट में इस बात को बोल रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी से पूछा गया कि भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक क्या है, ये श्लोक है। यानी मानव जीवन में हमें अधिक से अधिक प्रयास करना है कि भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझें, और जब हम नाम जप करते हैं, प्रामाणिक रूप से सुनते हैं, तब ये बातें समझ में आती हैं किस प्रकार से भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। मेरे पास अभी 10 मिनट ही है तो हम पूरा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। यह भी महत्वपूर्ण सत्य है कि बड़े से बड़े ग्रहों के प्रमुख अधिष्ठाता देवताओं को जो उच्च स्थान प्राप्त है, वह उनके पूर्व जन्मों में किए गए अत्यंत मूल्यवान पुण्य कर्मों के फलस्वरूप है। इसका संकेत कर्म निर्मित गतयः शब्दों से मिलता है। उदाहरणार्थ हम पहले ये बता चुके हैं कि चंद्रमा जीव कहलाता है क्योंकि वह हम जैसा जीवात्मा है, किंतु अपने पुण्य कर्मों के कारण उसे चंद्रदेव का पद प्रदान किया गया है। इसी प्रकार समस्त देवतागण जीवात्माएं हैं जिन्हें चंद्र, पृथ्वी तथा शुक्र के अधिष्ठाता जैसे विभिन्न पदों पर महान सेवा तथा पुण्य कर्मों के कारण आरूढ़ किया गया है। इनमें से सर्व प्रमुख सूर्य के अधिष्ठाता देवता सूर्य नारायण को ही श्री भगवान का अवतार माना जाता है। विवस्वान सूर्य नारायण है क्या, ये क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। विवस्वान जो है वो नारायण नहीं है, वहां पे वो सूर्य नारायण भगवान विवस्वान, क्षमा कीजिएगा, विवस्वान जी सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। समझ में आ रहा है या कुछ में कुछ डाउट हो रहा है? विवस्वान जो है वो देवता हैं, वो जीव हैं, लेकिन विवस्वान वहां के अधिष्ठाता देव भगवान है सूर्य नारायण, उनकी वो पूजा करते हैं, ये समझ लेना चाहिए। ठीक है, ध्रुवलोक के प्रमुख देवता महाराज ध्रुव भी जीवात्मा हैं। इस प्रकार से आत्मा दो प्रकार के हैं, परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा समान जीवात्मा या जीव। समस्त देवता ईश्वर की सेवा में संलग्न रहते हैं और केवल ऐसी व्यवस्था से ही ब्रह्मांड के सारे कार्य चलते हैं। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता में संबंध बहुत अच्छा बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान की व्यवस्था से किसी विशिष्ट सेवा में नियोजित हूं, किसी भी समाज में स्थान में हूं। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करूं। जैसे हमारे मंदिर में भी सभी भक्तों की अलग अलग सेवाएं हैं, तो अब देखिए भगवान ही आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की सेवा करो, या जो आपके इंचार्ज हैं उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि इस भक्त को यहां सेवा में लगाइए। और अगर बहुत अधिक तकलीफ नहीं है तो सेवा को निष्ठापूर्वक करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे हैं और हम लोग छोटी ही सेवा कर सकते हैं। हम लोग का साइज कितना है, ऑप्शन दे देता हूं मैं, 1 सेंटीमीटर, 100 मीटर या 200 मीटर, तीनों गलत हैं। तो बाल के अग्र भाग के हम लोग 10,000वें हिस्से के साइज में हैं, तो ऐसे ही हम लोग नगण्य हैं। तो हमारी सेवा का कोई महत्व खास मात्रा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन भाव की दृष्टि से बहुत है। इसलिए व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए, जो भगवान ने सेवा दिया है उसको हम लोग ईमानदारी से भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। हर व्यक्ति को भगवान ने शक्ति भी दी है। एक बात आप ये भी देखेंगे कि सभी जीवात्मा हैं, चंद्रमा सूर्य सब कुछ, लेकिन भगवान सबको अलग अलग रूप से शक्ति प्रदान कर रहे हैं जिसके द्वारा वो अपना कार्य कर पाते हैं, और वो अपना ही कार्य कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि अभी सोचिए 10 बजे या 11 बजे सूर्य सोचे भाई गर्मी तो बहुत दिन दे ली और ठंडक देता हूं तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं। तो इसलिए सूर्यदेव लाखों साल से अपना कर्तव्य कर रहे हैं, चंद्रमा अपना कर्तव्य कर रहे हैं, और संतुष्ट हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें जो भी सेवा मिलती है उसमें भक्त को संतुष्ट रहना चाहिए, भगवान का नाम जप करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। ये बात बहुत गंभीर है, विचार कीजिएगा। जहां तक इस श्लोक में वर्णित शयनों का या बाज पक्षियों का प्रश्न है, यह माना जाता है कि ऐसे विशाल बाज हैं जो बड़ी हाथी का शिकार कर सकते हैं। वे इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं कि वे एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा कर सकते हैं। वे एक ग्रह से उड़ना आरंभ करके दूसरे तक पहुंचते हैं और उड़ते समय अंडे देते हैं जिनसे अन्य पक्षी उत्पन्न होते हैं। ये समझ में आ रहा है? इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं कि वो जो अंडा देंगे नीचे आते आते एक बाज बन गया और उड़ने लग गया। तो आप कहेंगे प्रभु जी ये तो बात हजम नहीं हो रही है, हम तो ऐसा कोई बाज देखा नहीं है। तो हमने देखा क्या है, ये भी देख लेना चाहिए। तो इसलिए बार बार बात वही आएगी, शास्त्र का वर्णन स्वीकार कर लेना चाहिए। इस संबंध में प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति बोल रहा था, एज फार एज आई नो जहां तक मैं जानता हूं। तो प्रभुपाद जी ने बोला यही तो बात है, आप कहां तक जानते हैं आपके। आप पहली बात तो यह है कि हम ये भी नहीं जानते कि हम हैं कौन, तो इसलिए बाकी सोचना कि मैं कहां तक जानता हूं ये बहुत अज्ञान का द्योतक है। इसलिए शास्त्रीय बात को स्वीकार कर लेना चाहिए और इससे सोचना चाहिए कि सृष्टि भगवान की कितनी अद्भुत है। ऐसा पक्षी जो इतना ऊंचा उड़े कि अंडा देगा नीचे तक आने से पहले वो क्या कहेंगे उसको, पक्षी बन जाएगा, वो पक्षी फिर सीधे उड़ने लग जाएगा। इस प्रकार के बाज पक्षी भी होते हैं जबकि अंडे गिर रहे होते हैं। संस्कृत में ऐसे बाज पक्षियों को शयन कहा जाता है। आधुनिक परिस्थितियों में इतने बड़े शयन तो नहीं दिखते किंतु हमें ऐसे विशाल पक्षी ज्ञात हैं जो बंदरों को पकड़कर नीचे गिरा देते हैं और इन्हें मारकर खा जाते हैं। एक आध तो ऐसे वृंदावन भी होने चाहिए। इसी प्रकार ऐसे भी विशालकाय पक्षी ज्ञात हैं जो हाथियों पर आक्रमण करके उन्हें मार डालते हैं और खा जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी तिमिंगला नाम के एक जलचर को बोलते हैं जो वेल को भी खा जाती है, और वेल मेरे ख्याल में मैंने जो सुना है 60 फीट लंबा होता है। यहां से वहां तक शायद 80 फीट होगा, बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है वेल। उसको एक बार में जो खा जाए जलचर, वो तिमंगल होता है, वो दिखता नहीं है लेकिन नहीं देखे तो ठीक है। इसी प्रकार ग्रह भी तैरते हैं क्योंकि भौतिक प्रकृति श्री भगवान के आदेशानुसार वायु को संचालित करती है। ऐसा सोचा जा सकता है कि ऐसा संयोजन गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, किंतु प्रत्येक दशा में हमें यह स्वीकार करना होगा कि समस्त सिद्धांतों को बनाने वाले श्री भगवान ही हैं, उन पर तथाकथित विज्ञानियों का किसी प्रकार नियंत्रण नहीं होता। विज्ञानी झूठे ही यह घोषणा कर सकते हैं कि ईश्वर नहीं है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। तो हमने आज श्लोक से क्या सीखा कि जितने भी ग्रह हैं वह अपनी कक्षा में भगवान की आज्ञा से चल रहे हैं और वो वायुमंडल में तैर रहे हैं, जिस प्रकार से शयन पक्षी उड़ता है और वायु में तैरता रहता है, उड़ता है बेसिकली वायु की शक्ति से, और प्रकृति के पीछे भगवान है, भगवान का अध्यक्षता है, भगवान की अध्यक्षता में सारे कार्य हो रहे हैं। कोई प्रश्न है किसी का तो हम ले सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ रुकेंगे। प्रश्न नहीं होता है तो रुकेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद्भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।